नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
सन 2014 से पहले कि केवल यहां पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।